आज का हमारा विषय रहेगा भौतिक प्रकृति मटेरियल नेचर किस तरीके से जीव को बांधे हुए है, किस प्रकार से हम इस भौतिक प्रकृति के नियमों में बंधे बंद करके एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण करते हैं और भौतिक जगत में आने के कारण और यहाँ रहने के कारण जीव किस प्रकार से बहुत कष्टप्रद स्थिति में है, कर्म क्या है, कर्म बंधन हम बोलते हैं वो क्या है, उसका सिद्धांत कैसे लागू होता है, क्या वे जन्म जन्मांतर चलता है या एक ही जन्म में खत्म हो जाता है, इन सब विषय और समय समय क्या है, तो इन विषयों को आज हम लोग थोड़ा लेंगे। तो अभी तक हमने डिस्कस किया है ईश्वर के विषय में, जीव क्या है, ईश्वर और जीव का संबंध क्या है, और थोड़ा थोड़ा इस भौतिक प्रकृति के विषय में हमने देखा है। तो पिछली कक्षा में हमने देखा जीव के कुछ गुण, आत्मा के कुछ गुणों को देखा, जिसमें प्रमुख थे कि आत्मा जो है भगवान का अंश है, ममैव अंशो जीवलोके, लेकिन वो अंश नित्यता से अंश रहता है, ना तो ऐसे कभी था कि वो अपना उसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं था, ना तो कभी ऐसा होगा कि उसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, मुक्ति के बाद भी उसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस रहेगा। तो इसलिए फिर हमने देखा कि मुक्ति का मतलब क्या है, कि अभी जो आत्मा है वो भौतिक प्रकृति के प्रभाव में है, मुक्ति का मतलब है इस भौतिक प्रभाव से निकल करके अपनी स्वाभाविक स्थिति में आना, यानी भौतिक कलमश से मुक्त हो जाना, इसे ही मुक्ति कहते हैं, न कि आत्मा का खत्म हो जाना या आत्मा का विलीन हो जाना। ये मुक्ति एक प्रकार की मुक्ति है, पर यह निम्न प्रकार की मुक्ति है, ये ब्रह्म ज्योति में विलीन होने वाली मुक्ति है, पर उससे भी ऊपर, उससे भी हाई लेवल है कि भगवान की जो हमारी स्वाभाविक स्वरूप है हमारा, कि हम भगवान, हर आत्मा भगवान का नित्य सेवक है, उस स्थिति में स्थापित हो जाना वो हाईएस्ट मुक्ति है, रियल मुक्ति वो है। आत्मा का भी एक रूप हमने ये समझा, आत्मा का भी रूप है, चिन्मय रूप है, भौतिक रूप नहीं है, स्पिरिचुअल बॉडी, स्पिरिचुअल माइंड, स्पिरिचुअल सेंसेस, जिन स्पिरिचुअल इंद्रियों से आध्यात्मिक जगत में हम, यानी मुक्त अवस्था में भगवान के चिन्मय शरीर की सेवा करते हैं, चिन्मय रूप की सेवा करते हैं। तो इन कुछ महत्वपूर्ण चीजों को अभी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं कि हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा हिंट दिया था कि हमें आत्मा जो कि जिसका स्वाभाविक स्वरूप तो है अपने चिन्मय रूप में, भगवान के चिन्मय रूप की आध्यात्मिक जगत में नित्य रूप से सेवा करना और उस सेवा के द्वारा परम आनंद में रहना, सच्चिद आनंद स्थिति में रहना। तो क्यों हमें यहां, कैसे यहां आना पड़ा, उस विषय पर थोड़ा हमने देखा। तो इस विषय में एक श्लोक है, कृष्णा भुलिया जीव भोगवांछा करे, पाछेते माया तारे झपटिया धरे। ये बंगाली में है, कृष्णा भुलिया, कृष्णा को भूलकर जीव भोगवांछा करे, जीव कृष्ण को भूल करके, ये भूल करके कि मैं कृष्ण का दास हूं, जब जीव खुद भगवान के सेवा की जगह खुद भोग करने की इच्छा जब करता है इंडिपेंडेंटली, तब पाछे ते माया तारे झपटिया धरे। माया जो है वो भगवान की एक तरीके से शैडो की तरह से है, जैसे जहां भी हम चलते हैं वहां हमारी शैडो भी पीछे पीछे चलती है, ऐसे भगवान की शैडो परछाई की तरह से है वो माया, अविद्या जिसे हम बोलते हैं। तो जैसे ही हम भगवान को भूलते हैं तुरंत ये जो अविद्या शक्ति है उसके प्रभाव में आते हैं, तुरंत झपट लेती है हमको। कृष्णा भुलिया जीव भोगवांछा करे, पाछे ते माया तारे झपटिया धरे, झपट लेती है। तो यहां से हमारी शुरू होती है भौतिक जगत की यात्रा, आध्यात्मिक जगत से अभी हम आ गए भौतिक जगत में, माया ने झपट लिया है, माया के चंगुल में भी आ गए हैं, तो तो अभी हमें माया के द्वारा जो नियम है उसके नियमों के अंतर्गत रह करके हम कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि अभी माया के प्रभाव में आ गए हैं। तो जैसे ही हम भोग वांछा करते हैं और माया के प्रभाव में आते हैं, तो इस माया जगत में आकर के अपनी उन भोग वांछाओं को पूरा करने के लिए माया शक्ति द्वारा हमें एक शरीर दिया जाता है, आत्मा को एक शरीर दिया जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति समुद्र में गहराई में जाना चाहे, गोताखोर जैसे होते हैं, और वहां से हीरे मोती लाना चाहे या पानी में ही रहना चाहे काफी लंबे समय तक, तो इस शरीर में संभव नहीं है हमारे लिए। इसलिए हमें एक स्विमिंग सूट, स्पेशल सूट पहनना पड़ता है। एक स्पेशल सूट पहनेंगे तब जाकर के पानी में रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रह सकते। तो उसी प्रकार से भौतिक जगत तो जड़ है और हम हैं चिन्मय स्पिरिट, दोनों के गुणों में बिल्कुल अंतर है। इसलिए जब हम भौतिक जगत में आते हैं या जब हम भौतिक जगत की चीजों का भोग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको एक स्पेशल सूट देने की जरूरत पड़ती है, स्पेशल एक कवरिंग, जिसके माध्यम से हम इस भौतिक जगत से रेसिप्रोकेट कर सकें। नहीं तो कैसे करेंगे? स्पिरिट है, जड़ है, बिल्कुल अलग अलग नेचर है। तो उस सूट को कहते हैं बॉडी, शरीर। और ये शरीर दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रॉस बॉडी और एक सटल बॉडी, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर जो है वो बना होता है कर्मेंद्रियों, पांच कर्मेंद्री, पांच ज्ञानेंद्रियां। जो सूक्ष्म शरीर है वो बना होता है मन, बुद्धि और अहंकार। तो शास्त्र में एक तरीके से समझाया है हमारी स्थिति को, एक रथ का दृष्टांत दे करके। अभी सोचने की एक रथ है, उसमें पांच घोड़े हैं, एक सारथी है जो लगाम से घोड़ों को चला रहा है, और एक पैसेंजर है। तो जो रथ है, बॉडी जो रथ की है, जो वो तो हमारा शरीर, जो पांच घोड़े हैं वो पांच इंद्रियां हैं हमारी, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां भी देख सकते हैं उसको। जो सारथी है, जो इन इंद्रियों को चला रहा है, वो है बुद्धि, इंटेलिजेंस। और जिनके माध्यम से चला रहा है, रस्सियां, रीन्स, वो है मन। और जो पैसेंजर है उस रथ में, वो है हम, यानी कि आत्मा। तो इस प्रकार से हमारी यात्रा चल रही है। हम पैसेंजर बैठे हैं एक रथ में, जिसमें घोड़े हैं यानी इंद्रियां, जिसमें हमारा एक सारथी है इंटेलिजेंस, और मन के द्वारा संचालित हैं ये इंद्रियां। तो मन का कार्य है थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, सोचना, महसूस करना और इच्छा करना, ये मन का कार्य है। बुद्धि का कार्य है मन को हेल्प करना डिसीजन लेने में, क्या डिसीजन लेना है। जैसे हम कोई बोतल देखें और उसमें हमें लगे कि ये ऑरेंज जूस है, और हम उसको पीने जाएं, हमारी आंखों से तुरंत हमने देखा वहां तो वो डेंजर का साइन लगा हुआ है पॉइजन के ऊपर, तो तुरंत आंखों ने इंफॉर्मेशन मन में भेजी और माइंड ने उसको तुरंत इंटेलिजेंस को रेफर किया, बुद्धि को, ये क्या है साइन ये। तो इंटेलिजेंस ने तुरंत अपनी जो रेस्टोर्ड मेमोरी है उसके आधार पर एनालिसिस करके बताया, ये तो पॉइजन है, डोंट टच इट। तो इस तरह से इंटेलिजेंस हेल्प करती है हमारे माइंड को और इंद्रियों को, कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या नहीं है, डिसीजन मेकिंग, ये बुद्धि का काम है। और ये बुद्धि, मन और इंद्रियों के माध्यम से हम यानी आत्मा इस भौतिक जगत में सुख या दुख भोग करते हैं। तो वास्तव में ये मन और बुद्धि ये जड़ है, इनके अंदर अपने आप में लाइव नहीं है, ये जड़ है, पर जब आत्मा के संपर्क में आती हैं तब ये लिविंग जैसी प्रतीत होती हैं। जैसे ये ट्यूबलाइट है, अगर लाइट नहीं है तो ये ट्यूबलाइट जो फंक्शन है इसका वो नहीं करेगी, पर करंट आते ही लाइट देने लगेगी। या कोई पंखा है, अभी ये ऐसे ही है डेड, पर लाइव आते ही, लाइव वायर आते ही, करंट आते ही घूमने लगेगा, एक्शन हो जाएगा इसमें। तो उसी तरीके से जैसी आत्मा, जब तक आत्मा प्रवेश रहती है तब तक ये इंद्रियां, मन इत्यादि सब अपना अपना फंक्शन करते हैं, लाइव लगते हैं, क्योंकि अंदर लाइफ है आत्मा, इसलिए लाइव लगते हैं। और जैसे ही वो आत्मा निकल जाती है वापस जड़ जड़ हो जाते हैं वापस। तो इस तरह से हमारी यात्रा चल रही है। तो वास्तव में अभी फॉल्स ईगो क्या है, मन बुद्धि स्वयं में आ गया। फॉल्स ईगो मतलब मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार। अहंकार का मतलब है कि हम अपने को किस चीज से आइडेंटिफाई करते हैं। यहां पर अहंकार का यह मतलब है, हम अपने को किस चीज से आइडेंटिफाई करते हैं, हु वी थिंक वी आर, दैट इज कॉल्ड अहंकार। तो मिथ्या अहंकार मीन्स फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, जो हम नहीं हैं वो अपने को समझ लेना, उसे मिथ्या कहते हैं, रॉन्ग। तो भौतिक जगत में जब हम आते हैं तो ये मिथ्या अहंकार की वजह से, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन की वजह से आत्मा अपने को आइडेंटिफाई करती है इस भौतिक शरीर के साथ। अपनी रियल आइडेंटिटी की वो आत्मा है भूल करके वो ये सोचती है आई एम दिस माइंड एंड आई एम दिस बॉडी। जैसे हम फिल्म देख रहे हैं और कई बार देखते हैं कि फिल्म देखते देखते उसमें कोई ऐसे कोई डांस आ रहा है तो हम भी उसको इमिटेट करने लगते हैं, नकल उतार लगते हैं। तो ऐसे ही जो आत्मा है ये मन और बुद्धि और शरीर से बिल्कुल अलग है, लेकिन प्रभावित होने की वजह से, कंट्रोल में आने की वजह से भौतिक एनर्जी की, ये मन और बुद्धि के जो फंक्शंस हैं उसको इमिटेट करने लगता है। ये सोचता है कि मैं काम कर रहा हूं, जब मन के जो कार्य है वो सोचता है मैं, मन का सुख दुख मेरा सुख दुख। जैसे जब हम कार में जा रहे होते हैं, मान लीजिए आपकी अपनी कार है और आपको बहुत उससे अटैचमेंट है, बहुत लगाव है उस कार से आपको, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद, कमाई के बाद आपका वो सपना पूरा हुआ है। मान लीजिए आप जा रहे हैं और आप उस कार का एक्सीडेंट हो जाए और कार को हानि हो जाए, लेकिन आपको मान लीजिए कुछ नहीं हुआ, क्या आपको दुख होगा, दर्द होगा? आपको कुछ नहीं हुआ फिजिकली, लेकिन कार का एक्सीडेंट हो गया तो आपको होगा दुख। क्यों? क्योंकि हम अटैचमेंट, हम अपने को उससे अटैच कर लिए, दिस इज माई, मेरा, मैं ये कार। अभी वही चीज मान ली टैक्सी में जा रहे हो, टैक्सी पता है हमारी नहीं है, टैक्सी एक्सीडेंट हो गया, लाइट टूट गई, अरे भाई बाद में ठीक करा लेना, चलो भी हमारा काम तो करो, मैं वहां स्टेशन जाना है, पहले छोड़ दो बाद में ठीक कराना, हमको उससे फिर वो तकलीफ नहीं होगा क्योंकि अटैचमेंट नहीं है वहां। तो ऐसे हालांकि हम बिल्कुल अलग हैं शरीर से, पर ये फॉल्स ईगो की वजह से, मिस आइडेंटिफिकेशन की वजह से, अपने को शरीर मान लेने की वजह से, अपने को मन मान लेने की वजह से, इस शरीर के अंदर जो भी प्रतिक्रियाएं होती हैं वो हमें प्रभावित करने लगती हैं। आवेशितः, बिकॉज ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन देम। शास्त्र की दृष्टि में इसका जो फंक्शन, इसका जो मैकेनिज्म बताया है, उसमें अपने को एब्जॉर्ब कर लेने की वजह से वो हमें कर लेते हैं। जैसे तो हम क्या मानते हैं, जैसे कि हमें शरीर ही है, हम ये मान रखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हम रोड पे चलते हैं तो हम कोई रिक्शा वाला जा रहा होता है तो हम उसको बोलते हैं ए रिक्शा अलग चल, ए रिक्शा साइड हो जा, यानी कि हमने वो मान लिया कि वो रिक्शा और आदमी एक ही है। तो उस तरह से हम मान लेते हैं हम कार हैं और वो रिक्शा है, हालांकि उसको रिक्शा से कुछ लेने देना नहीं है और आपको कार से कुछ लेने देना नहीं है, यू आर अ डिफरेंट आइडेंटिटी। तो ये है फॉल्स ईगो का फंक्शन। तो फॉल्स ईगो है जो हमें जोड़ती है इस जड़ संसार से, दैट मीन्स आइडेंटिफिकेशन, जिसकी वजह से ही ये भौतिक जगत के सब सुख दुख हमें प्रभावित करते हैं। नहीं तो आत्मा का इससे कोई लेन देन नहीं है, ना तो भौतिक सुख से सुखी कर सकते हैं, ना तो भौतिक दुख से दुखी कर सकते हैं, लेकिन ये फॉल्स ईगो चिपक जाने के से फेविक्विक चिपक गया अभी ये अटैचमेंट की वजह से, उसकी वजह से वो हालांकि बिल्कुल अलग है आत्मा, स्पिरिट है वो, जड़ है, कुछ होता नहीं है उसको, आत्मा फिर भी हमेशा रहती है अलग, फिर भी बिकॉज ऑफ दिस फॉल्स ईगो सब प्रभावित हम लोग होते हैं और इस प्रकार से सुख और दुख का अनुभव इस भौतिक जगत में करते हैं। तो कर्म क्या है? मनुष्य जीवन में एक पर्टिकुलर टाइप का हमको बॉडी इस समय मिला हुआ है। जो प्रकृति है, भगवान की जो शक्ति है, वो जीवों के ऊपर कैसे प्रभाव करती है? तीन गुणों के माध्यम से जीवों को कंट्रोल करती है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जैसे कठपुतली होती है, धागे होते हैं, और धागे से जो कठपुतली नचाने वाला है वो कठपुतली को नचाता है, उसी तरीके से हम कठपुतली हैं और परमात्मा ये तीनों धागों से, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से हमको डायरेक्ट करते हैं, हमको हमारी डायरेक्शंस देते हैं हमको। और साथ में है भगवान की शक्ति, समय, टाइम फैक्टर। टाइम जो है भगवान की एक शक्ति है, इटर्नल है वो भी, नित्य शक्ति है। तो तीनों गुण और समय के प्रभाव से हम आत्मा इस शरीर के माध्यम से जो क्रियाएं करते हैं उन्हें कर्म कहते हैं। हम अपने शरीर, सूक्ष्म और स्थूल शरीर के द्वारा समय और तीनों गुणों से प्रभावित होकर जो एक्शन करते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, उन्हें कर्म कहते हैं। तो कर्म जो है वो बदला जा सकता है, कर्म परमानेंट नहीं है। जो हमने पांच विषय भगवद गीता में अभी तक स्टडी किए, सबसे पहला विषय था ईश्वर, दूसरा विषय था जीव, तीसरा विषय था भौतिक प्रकृति, चौथा है समय और पांचवा है कर्म। इन पांच में से चार जो है वो नित्य है, इटर्नल है, और एक अनित्य है। ईश्वर नित्य है, जीव नित्य है, ये भौतिक प्रकृति भी नित्य है। इसके जो मैनिफेस्टेशन है वो बदल सकता है, बाबा प्रलय होता है, बाबा सजन होता है, वो ठीक है, पर एनर्जी एज सच हमेशा से बनी रहती है। उसी प्रकार से समय भी नित्य है, लेकिन ये जो कर्म है ये केवल बद्ध अवस्था में, जब हम यहां हैं तभी, क्योंकि शरीर के द्वारा जो कार्य किया था उन्हें कर्म कहते हैं, इसलिए कर्म जो है वो केवल बद्ध अवस्था में होते हैं, मुक्त अवस्था में कोई कर्म नहीं होते हैं, ये टेम्परेरी है ये हमारे। और ज्ञान के द्वारा हम इन्हें बदल भी सकते हैं, अपने कर्मों को बदल सकते हैं, हमेशा के लिए इनको काट सकते हैं, यानी कर्म बंधन से निकल सकते हैं, हमेशा के लिए इसको हम निकल सकते हैं, इसलिए टेम्परेरी है कर्म जो है वो टेम्परेरी है। तो अभी हम एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाते हैं, कौन से शरीर को प्राप्त करेंगे, किस चीज पर निर्भर करता है? तो आत्मा जो है, जिसका सिम्टम है कॉन्शियसनेस, जो मन के द्वारा और शरीर के द्वारा प्रभावित होती है, हर क्षण हम जो भी इच्छा करते हैं आत्मा इच्छा करती है, इच्छा करने वाला जो एजेंसी है वो आत्मा है बेसिकली, इनिशियल बिल्कुल। और उस इच्छा के अनुसार जो परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं वो हमारी इच्छाओं को देखते हैं कि हमारी इच्छा क्या है, जीव की इच्छा क्या है, और उस इच्छा के अनुसार सैंक्शन करते हैं वो कार्य, हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके वो सैंक्शन करते हैं, उसके अनुसार इस भौतिक प्रकृति का अरेंजमेंट करते हैं, फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करते हैं। तो परमात्मा जो लिंक है हमारा और इस भौतिक प्रकृति के बीच का, वो लिंक है भौतिक प्रकृति और आत्मा के बीच में, परमात्मा, क्योंकि भौतिक प्रकृति तो अपने आप में बेजान है, तो परमात्मा के माध्यम से ये एक्शन इसके ऊपर होता है, जीव के ऊपर। तो हर क्षण हम जो भी इच्छा करते हैं और जो भी उसके बाद क्रिया करते हैं उससे हमारे ऊपर एक इंप्रेशन पड़ता है माइंड पे, जो अल्टीमेटली हमारी कॉन्शियसनेस को अफेक्ट करता है। इस तरह से पूरा जीवन भर जो भी हम कार्य कर रहे हैं और जो भी हम इच्छा कर रहे हैं उसका एक इंप्रेशन जुड़ता जाता है हमारे माइंड पे, और माइंड की वजह से कॉन्शियसनेस पे, क्योंकि आत्मा का बिल्कुल नेक्स्ट नेबर है माइंड। तो माइंड में जो भी कुछ चल रहा है उसका इमीडिएट इफेक्ट कॉन्शियसनेस पे पड़ता है, आत्मा में पड़ता है। जैसे पानी है शुद्ध, पानी के अंदर एक ड्रॉप इंक मिल जाए तो उसका कलर चेंज हो गया, फिर उसमें कुछ एक और रेड इंक गिर जाए कलर और थोड़ा बदल गया, फिर एक और कुछ गिर जाए और अलग कलर आ गया। ऐसे पूरा जीवन हर क्षण जो भी हम माइंड और माइंड में जो भी हम इच्छा कर रहे हैं और जो भी इस माइंड और शरीर से जो भी कार्य कर रहे हैं, जो परसीव कर रहे हैं, उसका एक एक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता जा रहा है। एंड टाइम पर, मृत्यु के समय पर जब हम शरीर छोड़ते हैं तो उस समय कॉन्शियसनेस की जो फाइनल स्टेज होती है, फाइनल इंप्रेशन जो होता है कॉन्शियसनेस का, उसके आधार पर परमात्मा जीव को अगला शरीर प्रदान करते हैं। पूरे जीवन में हमने एक प्रकार की इच्छाएं डेवलप की, मान लीजिए मनुष्य जीवन का शरीर है, पूरा जीवन हमने जिसके संपर्क में आए हर एक चीज का प्रभाव में पड़ता है, कैसे लोगों के संग में हम आ रहे हैं, कैसे एनवायरमेंट में रह रहे हैं, उन सब का प्रभाव पड़ रहा है हमारे पर, और हमारी अपनी इच्छाएं सबका प्रभाव, मिला जुला प्रभाव। उस सबके मिलने से मान लीजिए मनुष्य जीवन मिला और हमारी एक प्रकार की एक इच्छा डेवलप हो रही है पूरे जीवन में कि हमें लीडरशिप, लीडर बनना है, ऐसे की इच्छा तीव्र होती जा रही है, कल्टीवेट कर रहे हैं हम ये इच्छा को, लीडर बनना है, लीडर 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 लीडर। तो ये इच्छा प्रोमिनेंटली हमारे कॉन्शियसनेस को अफेक्ट कर रही है। फिर हमारे जो कर्म है तो वो कर्म एक पर्टिकुलर प्रकार के कर्म है जिनके ऊपर इच्छा और कर्म के ऊपर आधारित एंड में परमात्मा भी देखते हैं इसका फाइनल कौन सी बॉडी मिलनी चाहिए बेस्ड ऑन इच्छा और कर्म। तो इच्छा है लीडर की, पर मान लीजिए कर्म उस कैटेगरी में आते हैं जिससे कि उसको नेक्स्ट बॉडी, ह्यूमन बॉडी नहीं मिल सकती, क्योंकि यह गुणों के आधार पर होता है। जो सत्वगुण जिसने पूरा जीवन कल्टीवेट किया है, अधिक मात्रा में सत्वगुण हो गया है जिसके क्रियाओं से मन में ऊर्ध्वम गच्छन्ति, वो मनुष्य जीवन में ऊपर की तरफ चलता है, नेक्स्ट बॉडी उसको हायर बॉडी मिलेगी, बेस्ट बेटर बॉडी, या तो ह्यूमन बीइंग में ही बेटर बॉडी, अच्छी सेहत, अच्छी सुंदरता, अच्छा घर में जन्म, श्री ऐश्वर्य इत्यादि, अच्छी बुद्धि, या तो और ऊपर जाएंगे और अच्छा कर्म किया होगा तो देवलोक, स्वर्गलोक, बहुत लंबी आयु और अधिक अच्छे एंजॉयमेंट, हाइएस्ट ब्रह्मा। तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्तः, जिन्होंने पूरा जीवन सत्वगुण में बिताया है, सत्वगुण की अधिकता रही, उनको ऊपर की तरफ की योनि मिलती है। मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, जो राजसिक प्रवृत्तियों में रहे हैं अधिक, वो इसी भौतिक जगत में रहते हैं, मनुष्य जीवन में दोबारा से प्राप्त करते हैं मनुष्य जीवन को ही। अधो गच्छन्ति तामसः, और जिन्होंने तामसिक गुणों को अपनाया है, प्रभावित हुए हैं अधिक उनसे, वो लोग निम्न योनियों में जाते हैं, जानवरों की इत्यादि योनियों में जाते हैं। तो मान लीजिए उसका जीवन तो रहा है तामसिक, इच्छा रही है लीडर बनने की, तो परमात्मा उसको ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि वो लीडर बने पर कुत्तों का, प्राणियों में, वहां भी लीडर होते हैं। तो इच्छा और कर्म के मेलजोल के अनुसार परमात्मा की डायरेक्शन से अगला शरीर मिलता है। भगवान बताते हैं भगवद गीता में, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानां यंत्र रूढ़ानी माया। ये माया के द्वारा दिया गया एक यंत्र है शरीर, इसमें आरूढ़ है, बैठा है आत्मा, यंत्र रूढ़ानी, इसमें बैठा है आत्मा। ईश्वर सर्वभूतानां, और ईश्वर सबके हृदय में बैठे हैं, उस यंत्र में हृदय में सबके बैठे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेश अर्जुन तिष्ठति, हृदय देश में बैठे हैं। ब्राह्मण सर्वभूतानां, जो सबको घुमा रहे, भ्रमण करवा रहे, यंत्र रूढ़ानी माया, यंत्र में बैठे जीव को भ्रमण करवा रहे, उसकी इच्छा और कर्म के अनुसार कौन सी बॉडी चाहिए। किसी को पूरा जीवन भर बहुत अधिक मांस, मनुष्य जीवन में मांस खाने की उसको फ्रेंड सर्किल मिला, वहां से उसका मांस खाना का आदत पड़ गई, और उसको बहुत अधिक उसकी इच्छाएं बढ़ती गई मांसाहार की, और अधिक और अधिक और अधिक। तो परमात्मा देखते हैं कि उसकी इच्छा है अधिक से अधिक मांस खाने की, तो वो अरेंज करेंगे कि उसको ऐसी बॉडी मिले नेक्स्ट टाइम जिसमें वो अपनी इस इच्छा को आसानी से अच्छी तरीके से पूरा कर सके। तो ह्यूमन बॉडी से भी अच्छी बॉडीज हैं जहां पर मांस खाने की फैसिलिटी है, शेर की योनि है, वो बेटर है हमारी बॉडी से मांस खाने के लिए, वो सुटेड है। पूरा जो सिस्टम है, जैसे हम देखें, हम साइंस में थोड़ा कंपेयर करें तो वेजिटेरियन जो लोग होते हैं जानवर या मनुष्य, और जो नॉन वेज होते हैं उनकी शरीर में डिफरेंस होता है। जैसे इंटेस्टाइन की लेंथ देखें हम लोग, तो वेजिटेरियन में वो 6 मीटर्स तक लंबी होती है, 6 times द बॉडी लेंथ होती है कई के प्राणी में। और जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं उनकी बहुत छोटी होती है, क्योंकि जो नॉन वेज है उससे जो टॉक्सिन्स निकलते हैं वो जल्दी से जल्दी शरीर के बाहर निकल सके। उसी प्रकार से जो अंदर एसिड प्रोड्यूस होता है इंटेस्टाइन्स में, स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो नॉन वेजिटेरियन में बहुत हाई होती है कंपेयर टू वेजिटेरियन, क्योंकि मांस को गलाने के लिए बहुत हाई कंसंट्रेशन चाहिए। उसी प्रकार से आप देखें दांत जो होते हैं, जो कैनाइन टूथ हैं, वो पूरे डेवलप्ड होते हैं जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, क्योंकि मांस को फाड़ना पड़ता है। पर जो वेजिटेरियन होते हैं उनके अंदर मोलर्स होते हैं चबाने के लिए, इसके लिए कैनाइन डेवलप नहीं होते। अब एक कुत्ता है और शेर है, उनके कैनाइन टीथ बड़े बड़े होते हैं, फिर उनके क्लॉज होते हैं, क्लॉज पकड़ने के लिए प्रे को। यानी आप देखिए तो पूरा एनालाइज कीजिए तो उसकी बॉडी पूरी बनी है उसी के लिए, है ना। हमें तो किसी औजार को लेकर औजार के साथ पकड़ना पड़ता है, फिर किसी नाइफ के साथ काटना पड़ता है, फिर उसे पकाना पड़ता है, तब जा करके हम खा सकते हैं। पर आप देखिए लायन है, उसको सब फैसिलिटीज पकड़ दी है, उसे कोई औजार की जरूरत नहीं, सीधा हाथ से पकड़ सकता है, सीधा कच्चा खा सकता है, ना पकाने की जरूरत है। क्यों? उसकी बॉडी उससे वेल सुटेड फॉर दैट। तो अगर हम इस जीवन में एक पर्टिकुलर टाइप की इच्छाएं डेवलप कर रहे हैं और उसके अनुसार उस प्रकार कर्म कर रहे हैं, तो परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं, वो देख रहे हैं इसकी इच्छाएं क्या है। ही साक्षी बताया गया, परमात्मा के फंक्शन बताए गए हैं, उपद्रष्टा अनुमंता। परमात्मा के दो फंक्शन है, उपद्रष्टा अनुमंता, विटनेस एंड सैंक्शन। ही इज विटनेसिंग अस एंड देन ही सैंक्शंस। सैंक्शंस मतलब प्रकृति को आदेश देते हैं, अरेंज करवाते हैं, नेक्स्ट बॉडी इसको ये दे दो। ही वॉन्ट दिस बॉडी, और उसका जो डिजर्विंगनेस, डिजायरिंग डिजर्विंगनेस, दोनों, उन दोनों के आधार पर, डिजर्विंग है हमारा कर्म और डिजायरिंग है इच्छाएं, उन दोनों के आधार पर वो अरेंजमेंट करवाते हैं माया के द्वारा, माया शक्ति के द्वारा अपनी, कि उसको ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडी मिल जाए। अभी नेक्स्ट बॉडी मिल गया, अभी जैसे ही हमें नेक्स्ट बॉडी मिला तब हम उस बॉडी से कंडीशन हो गए, उस बॉडी जैसी मिल गई उसके अनुसार फिर हमें चलना पड़ेगा। फिर जैसे एक है मान लीजिए टोयोटा क्वालिस और एक है ट्रैक्टर, तो यदि आप क्वालिस में जा रहे हैं तो आप बहुत तेज से आ सकते हैं, एक बहुत आराम से आ सकते हैं, पर अगर आप ट्रैक्टर में जा रहे हैं तो यू कैनॉट एक्सपेक्ट, आप कंडीशन हो गए, सेम ड्राइवर है, आप वही हैं, बट नाउ यू आर कंडीशन, आप उससे भी प्रभावित हो गए। तो उसी प्रकार से जैसे ही जीव एक पर्टिकुलर बॉडी को प्राप्त करता है, ही हैज टू एक्ट लाइक दैट बॉडी। कुत्ते का शरीर मिला तो ही हैज टू बिहेव लाइक ए डॉग, सुअर का शरीर मिला ही हैज टू बिहेव लाइक ए हॉग, यानी कि ही विल स्टार्ट लाइकिंग स्टूल, जो हम सोच भी नहीं सकते हमें, बट ए हॉग जो सुअर है उसको अच्छा लगने लगेगा। तो ये है प्रकृति का प्रभाव, नेचर का हमारे ऊपर, कि हम जैसी बॉडी में होते हैं देन वी आर कंडीशन। जैसे समुद्र में आप छलांग लगा जाएं, एक बार समुद्र में गिर गए देन यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, फिर लहरें आपको जहां जहां उछालेंगे निकालेंगे वहीं वहीं आपको जाना पड़ेगा। तो ऐसे ये तीन गुण हैं हर एक शरीर के साथ, उसके अलग अलग गुणों का कॉम्बिनेशन है। कोई रजोगुण किसी शरीर में अधिक है, किसी में सत्वगुण अधिक है, किसी में तमोगुण अधिक है। जैसे ही आपने वो बॉडी मिली आप उस प्रकार के गुणों से प्रभावित हो गए। तो इस प्रकार से हम जो है बंधे हुए हैं, दैट इज वाई हमारी स्थिति कहते हैं बद्ध अवस्था, हम कंडीशन है। जैसा हमारा शरीर मिला है हम वैसा प्रकार का कार्य करने के लिए कंडीशन है। तो जो जानवरों की योनियां हैं मनुष्य से अलग नीचे, उसमें तो बिल्कुल स्वतंत्रता है ही नहीं, उसमें जो है प्रकृति के बिल्कुल नियम में इतना टाइट बंधे हुए हैं कि उनको थोड़ी सी भी ढील नहीं है प्रकृति के विरुद्ध कुछ करने की। इसलिए आप देखिए तो शेर जो है वो कभी दाल रोटी खाएगा नहीं, बिल्कुल अपनी प्रकृति के अनुसार चलते हैं। इसको साइंटिफिक टर्म में यदि हम बोले तो दे एक्ट अकॉर्डिंग टू इंपल्सिस, उनका बिहेवियर इंपल्सिव होता है, केवल बॉडी में जैसे इंपल्सिस वैसे। इसलिए जानवरों के लिए कोई कर्म का सिद्धांत नहीं होता है, वहां तो ऑटोमेटिक इवोल्यूशन होता है निम्न स्तर के शरीर से नेक्स्ट बॉडी प्रकृति के नियम के अनुसार। तो 84 लाख योनियों में अलग अलग डिवीजन है, 9 लाख योनियां जलचर हैं, ऐसे करके फिर पेड़ पौधों की योनियां का, फिर उसके बाद इंसेक्ट्स, उसके बाद जानवर, और फिर 4 लाख प्रकार की मनुष्य की योनियां है। क्योंकि जो योनि शब्द है वो हमारी बायोलॉजिकल स्पीसीज नहीं है, वो गुणों के आधार पर है, तमोगुण रजोगुण से कॉन्शियसनेस के स्टेज के आधार पर है वो योनियां। तो मनुष्य से नीचे की योनियों में ऑटोमेटिक इवोल्यूशन होता है। डार्विन ने जो इवोल्यूशन बताया वो शरीर का बताया, पर वास्तव में वो इवोल्यूशन इस तरह से होता है कि निम्न एक ही आत्मा निम्न प्रकार के शरीर को त्याग करके उच्चतर 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 शरीर प्राप्त करता आता है, जब तक कि वो मनुष्य योनि में ना आ जाए। मनुष्य योनि में आने के बाद से प्रारंभ हो जाता है कर्म का सिद्धांत, क्योंकि अभी उसको थोड़ी फ्रीडम है कि वो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चलने का प्रयास कर सकता है, इच्छा कर सकता है, इसलिए अभी वो रेस्पॉन्सिबल हो जाता है। आप देखिए, एक कोर्ट है या बड़ा ऑफिस है उसमें, या रेलवे ऑफिस रेल डिपार्टमेंट है, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो जो मिनिस्टर है ही इज हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फर्स्ट, ही टेक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। जो एक टूलर, वो जो मैकेनिक है वहां जो वो कर रहा है, ही इज नॉट हेल्ड रेस्पॉन्सिबल, वो जो भी कार्य कर रहा है ही इज नॉट हेल्ड रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबिलिटी इज हेल्ड विद हिम, क्योंकि ही इज वेरी मच कंडीशन, ही हैज ए वेरी लिमिटेड ब्रेन, वो तो केवल आप ये करो ये मत करो बस। तो मनुष्य जीवन में हमारी कॉन्शियसनेस इतनी डेवलप होती है कि हमारे पर अधिक स्वतंत्रता है, तो उस स्वतंत्रता की वजह से हम रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं अभी जो हम कर रहे हैं, इसलिए वहां पर कर्म का सिद्धांत शुरू आता है। नाउ वी हैव बिकम रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्ट। इसलिए मनुष्य जीवन में अभी हमारे ऊपर निर्भर है कि नेक्स्ट बॉडी क्या मिलने वाली है। मैन इज द मेकर ऑफ डेस्टिनी, इस तरह से अभी हमारे हाथ में है। हम जिस प्रकार के गुणों से अपने को संबंधित रखेंगे, जैसा डेवलप करेंगे वैसा मिलेगा, मतलब कुछ हद तक हमारे हाथ में, पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं है, कुछ हद तक हमारे हाथ में, फिर भी प्रकृति का प्रभाव तो है ही। आप देखें, कुछ लोग होता है उनको हमेशा सोना पसंद होता है, तामसिक प्रकृति रहती है उनकी, हमेशा से उनको छुट्टी मिलेगी तो बस ये सोचेंगे कभी ज्यादा सोएंगे, और उनको हमेशा नशा वाली चीजों में मजा आता है, प्रमाद ऐसे उनकी प्रवृत्ति होती है। और कुछ लोग आप देखिए गुण, हमेशा उनको बहुत राजसिक, हमेशा काम करते रहना, ओवर एंडेवर, बहुत हमेशा बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं, उनको सोना पसंद नहीं है, वो सोचते हैं सोने में टाइम वेस्ट नहीं करते, 2 घंटे 3 घंटे सोते हैं बस, बहुत मेहनत करते हैं, भागते रहते हैं भागते रहते हैं, यहां शांति नहीं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग है, बहुत बड़ा काम करना है, राजसिक। और सात्विक जिनमें ज्ञान होता है, बहुत अधिक इच्छाएं नहीं होती हैं, शांत वातावरण पसंद करते हैं, संयमित जीवन, ऐसे लोग के अंदर सत्वगुण की अधिकता है। तो ऐसे हमारे ऊपर भी पूरी तरह से गुणों का प्रभाव है, पर एक हमारी जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति है उसकी वजह से थोड़ी फ्रीडम हमको है कि हम चूज कर सकते हैं। जैसे अभी ये सत्संग हो रहा है, तो अभी आपने ही चूज किया कि आपको ये रखना है कि नहीं रखना है, आपने अपनी इंडिपेंडेंट डिजायर को चूज किया कि चलो भाई, आपने धीरे धीरे अपने आपको ऐसा समझ में आया कि अच्छा सुनना चाहिए। आप लोग अभी यहां आए हैं, आप अपनी इच्छा से आए, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं आए, जिनको पता है कि प्रोग्राम है लेकिन उनकी इच्छा है, उनके उनका डिसीजन, उनका चॉइस क्या हुआ, नहीं जाना। तो दोनों चीज काम करती हैं अभी, हमारी अपनी एंडेवर इच्छाएं और साथ साथ प्रकृति के तीनों गुण। तो इसलिए मनुष्य जीवन में अभी हमारे पास कर्म का सिद्धांत लागू होता है, और कर्म के अनुसार हर क्षण जो भी हम कर्म कर रहे हैं हमारे माइंड में हमारा नेक्स्ट बॉडी बनता जा रहा है, उसका जो प्रभाव होता जा रहा है उसकी वजह से नेक्स्ट बॉडी ऑलरेडी बन रहा है, और फाइनल स्टेज मृत्यु के समय पर फाइनल जो बॉडी तैयार होगा, वी विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द नेक्स्ट बॉडी। इसलिए भगवत गीता में बताया गया, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तं तमेव कौन्तेया सदा तद भाव भाविताः। एंड टाइम पर, डेथ के टाइम पर, सम टोटल जो भी हमारी पूरी कॉन्शियसनेस का लेवल रहेगा, यम यम वापी स्मरण भाव, जो हम सोचते हुए देह त्यागेंगे उसी के अनुरूप हमको अगला शरीर मिलेगा। इसलिए वैदिक शास्त्र में जो डेथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, उसको उसको फाइनल टेस्ट माना गया है, परीक्षा मानी गई है, क्योंकि उस फाइनल परीक्षा के आधार पर निर्भर करता है कि हमारे को अगला शरीर कौन सा मिलने वाला है। तो फाइनल मोमेंट में डेथ पे जो हम चिंतन करते हैं वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है कि एक्सीडेंटली हमने उस समय में क्या चिंतन किया, बल्कि वो जो प्रोसेस है डेथ का उसमें पूरा जीवन भर जो हमने सोचा है, जो हमने इच्छाएं की हैं, उसके अनुरूप अंत में हमारा स्मरण होता है। तो इसलिए पूरा जीवन हमने जैसा चिंतन किया है, जो अटैचमेंट रखे हैं जिन चीजों से, उसी के अनुसार निश्चित होगा कि एंड टाइम पे हमारी टोटल चिंताएं चिंतन क्या रहेगा, और उसके आधार पर परमात्मा हमको नेक्स्ट बॉडी प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी यात्रा चल रही है, आई थिंक इट इज बिकमिंग क्लियर। ऐसे हम लोग 84 लाख योनियां हैं, अलग अलग योनियों में भ्रमण करते जा रहे हैं। मनुष्य जीवन मिला है वहां डिसीजन है, एक बार आपने उसको मिस किया नीचे की तरफ चले गए जानवर की योनि में, फिर दोबारा से वही चक्र चल के फिर वापस आपको बहुत लंबे समय बाद दोबारा चांस मिलेगा। इसी प्रकार से जब ऊपर जाते हैं देवलोकों में पुण्य करने के बाद, अच्छे कर्म करने के बाद, तो जब तक पुण्य कर्म का आपके पास बैलेंस रहता है तब तक आप वहां रहते हैं, और शीने पुण्य मृत्यु लोकम विशंते, जैसे ही पुण्य समाप्त होते हैं वापस पृथ्वी जगत पे आ जाते हैं। यानी ये जो है, जो मनुष्य जीवन है अर्थ प्लैनेट पर, ये सेंटर है, यहां से ऊपर जाके नीचे आना, नीचे जाके फिर ऊपर आना, यहां चॉइस है। इसलिए देवलोक भी मनुष्य जीवन की इंतजार करते हैं, जो डिसीजन मेकिंग जो होता है सब, जो इस कर्म बंधन से छूटने का जो मौका है वो केवल इस मनुष्य जीवन में ही है और किसी योनि में नहीं है, इसलिए इसको सबसे दुर्लभ माना गया है। तो अभी इस यात्रा के दौरान हमने जैसे पहले डिस्कस किया, आत्मा का गुण है आनंदमयोभ्यासात, आनंदित रहने की इच्छा। भगवान के को आनंदित करने में, उनकी सेवा करने में ही वास्तव में हमारा आनंद है, रियल आनंद। तो पर जब हम वो भूल करके हम सोचते हैं नहीं, हम इंडिपेंडेंटली आनंद देंगे, तब हमें इस भौतिक जगत में आना पड़ा। अभी भगवान ने पूरा अरेंजमेंट कर दिया, ठीक है आप ट्राई कर लो, आपको क्या चाहिए, आपको आनंद ऐसे लेना है ऐसे ले लो, ऐसे लेना है ऐसे ले लो, जैसे चाहिए वैसे सब प्रकार की बॉडियों में हम लोग घूम रहे हैं। तो अभी देखना है, क्योंकि ये इल्यूजन है, हमने बोला माया जो नहीं है, तो वास्तव में जो भी हम यहां आनंद अनुभव कर रहे हैं वो एक्चुअली इल्यूजन है। हमारी स्थिति ऐसी है जैसे एक मछली पानी के बाहर, मछली पानी के बाहर होगी तो हमेशा तड़पेगी, तो ऐसे ही हम हमारी स्वाभाविक स्थिति से अलग हो गए हैं, इसलिए वास्तव में तो हम बहुत इस समय कष्टप्रद स्थिति में है, लेकिन माया के प्रभाव से हमें लगता है कि हम हैप्पी हैं, बिकॉज ऑफ इल्यूजन वी फील वी आर हैप्पी। एक जो सुअर है गटर में पड़ा है, हमको लगेगा क्या जीवन है, बट पिग इज वेरी हैप्पी, पिग इज वेरी हैप्पी। एक बार इंद्र, उनको एक शाप मिला किसी एक अपराध की वजह से कि आपको कुछ समय के लिए सुअर की योनि में जाना पड़ेगा। तो इंद्र लोग तो बहुत ही महान, वहां तो बढ़िया फैसिलिटीज हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है, उनको सुअर की योनि में आना पड़ा। और जब उनका समय खत्म हो गया तो ब्रह्मा जी उनको बोले कि अभी आपका टाइम खत्म हो गया, चलो वापस आपकी जगह पे। तो इंद्र बोले व्हाई, आई एम क्वाइट हैप्पी हियर, मैं क्यों जाऊं, सब बढ़िया है। तो ये माया की वजह से हम जिस स्थिति में भी होते हैं वी फील हैप्पी, ये प्रभाव है माया का। कोई कितनी कष्टप्रद स्थिति में भी है, ही स्टिल फील्स या आई एम ओके, कैसे हो सब, आई एम ओके। आप जाइए हॉस्पिटल में, कोई आदमी पूरा एक्सीडेंट हो गया है, पूरा सब बैंडेज बंधी हुई है ऊपर से नीचे तक, और सब पाइप जा रहे हैं, ये बहुत इतनी सब बुरी हालत है, आप बोलिए भाई क्या हालत है, कैसे हो, ठीक है अभी, अच्छा है अभी, बढ़िया। ये माया के प्रभाव से होता है, माया जो है वो इल्यूजरी पोटेंसी है, ये इल्यूजन क्रिएट करती है। वास्तव में हम देखें तो माया की दो शक्तियां हैं, माया दो, माया के अंतर्गत दो हैं, एक आवरणात्मिका और एक प्रक्षेपात्मिका। आवरणात्मिका मीन्स कवरिंग, हमारी बुद्धि को कवर कर देती है, हमारी जो प्रॉपर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है उसको कवर कर देती है। अभी हम नहीं देख पाते कि वास्तव में सही क्या गलत क्या है, रियलिटी में जो आत्मा के लिए सही है गलत है वो नहीं देख पाते, आवरण कर देती है, इल्यूजन। और प्रक्षेपात्मिका मतलब पकड़ के लाने, खींचती है। जैसे हम बीमार हुए, उस समय बहुत कष्ट हुआ, बहुत तकलीफ हुई, उस समय हमको लगा कि ये बहुत ही जगत सब बेकार है, शरीर सब कष्टों का कारण है, ओ भगवान कब बुलाएगा, ये सब बेकार जगत है, हम कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन लगता है कि सब बेकार है, सब फ्रस्ट्रेशन है यहाँ, पर जैसे ही वो समय निकल जाता है फिर दोबारा से हमको लगता है कि यार इट्स ओके, फिर दोबारा से लगता है हाँ अच्छा है सब, अच्छा हो गया सब, फिर अच्छा लगता है। इसे बोलते हैं शमशान वैराग्य, शमशान वैराग्य। जब शमशान में जाते हैं सब, तब सबको एकदम से रियलाइजेशन होता है ये सब जगत में क्या है यार, एक दिन ऐसे जाना है हमको भी, तो फायदा क्या है सबका, इतना सब कर रहे हैं, उस समय लगता है कि सब बेकार है। पर जैसे ही बाहर निकलते हैं, भाई क्या हुआ आपके वो बच्चे का सिलेक्शन हुआ, हाँ अरे वहाँ हो गया, बस सब भूल जाते हैं, फिर वही दोबारा से, इट्स लाइक ए ड्रीम। जैसे जब हम सपना देखते हैं तो सपने में देखते रहते हैं हम ये राजा बन गए, हम ये हो गया, ये हो गया, और पूरा रियल लगता है हमको उस समय, और जैसे सपना टूटता है अरे क्या देख रहा है, वो सब एकदम से गायब आता है, खत्म फिनिश, वो सब जो आनंद दे रहे थे वो सोचे बोला है सब यूजलेस, वो तो सब खत्म टेम्पररी फिनिश। तो ये है माया के प्रभाव से, इस समय में जो भी अनुभव कर रहे हैं हम सुख और दुख, वो एक्चुअली वो टेम्पररी है, बल्कि अनेक अनेक कष्ट इसकी वजह से हमको हो रहे हैं माया में आने की वजह से, जो बताया गया है विशेष रूप से तीन प्रकार के हैं, तापत्रय जो सबको झेलने पड़ रहे हैं हर जीव को, आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश। वो कष्ट जो शरीर और मन से उत्पन्न होते हैं उन्हें कहते हैं आध्यात्मिक क्लेश, बीमारियां शारीरिक और मानसिक, इन्हें कहते हैं आध्यात्मिक क्लेश। सेकेंड कैटेगरी है अधिभौतिक, जो दूसरे जीवों के द्वारा हमें कष्ट मिलते हैं, सांप बिच्छू पड़ोसी, दूसरे जीवों के द्वारा जो हमें कष्ट होते हैं उन्हें कहते हैं अधिभौतिक क्लेश। और तीसरी कैटेगरी है अधिदैविक, देवताओं के द्वारा प्रकृति के द्वारा अधिक गर्मी अधिक सर्दी बाढ़ हल्लन, ये सब अधिदैविक क्लेश। इस तरह हर जीव हर क्षण इन तीनों क्लेशों से पीड़ित है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो बडी इज एक्सेप्शन। आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक तीनों के तीनों क्लेशों से सब लोग जूझ रहे हैं, और इनके प्रभाव से मेनली चार प्रकार के महान से महान कष्ट हैं एब्सोल्यूट, जो सबको झेलने ही पड़ेंगे, जो भी इस भौतिक जगत में है, जिसका भी भौतिक शरीर धारण जिसने भी किया है उसे चार महान कष्ट तो झेलने ही पड़ेंगे, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी। मेडिकल साइंस कितनी भी एडवांस हो जाए, आपके पास कितना भी पैसा हो, आपकी कोई भी पोजीशन हो, आप अमेरिका में हो कि इंडिया में हो कि ब्रह्मा की योनि में भी क्यों ना हो, जो हाईएस्ट स्टेटस है, फिर भी ये चार जो कष्ट हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि किसी को छोड़ते नहीं है। जन्म में जो कष्ट होता है वो हम भूल गए अभी, लेकिन उसका विवरण शास्त्रों में पता है, शास्त्रों में मिलता है हमको कि जन्म के समय में मां के गर्भ में 10 महीना एक छोटी सी जगह पर सिकुड़ करके अंधेरे में सब कुछ फोल्ड करके रहना पड़ता है, और उस समय बताया गया है कि बहुत सारे छोटे छोटे कीट होते हैं जो काटते रहते हैं, पर जीव को हिल नहीं सकता, अत्यंत कष्टप्रद स्थिति में रहता है। मां जो खाती है जो कभी कड़वा खट्टा, और जो उसकी वजह से, और जो एब्डोमेन में जो अग्नि होती है उसकी वजह से उसको बहुत बेचैनी होती है, वो घूमता है हिलता है, बट ही कांट डू एनीथिंग। उस समय में शास्त्र में वर्णन है कि हमारी जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है उस समय वो डेवलप होती है एक पर्टिकुलर टाइम पर आने पर, और उस समय भागवत में आप पढ़ेंगे उसमें वर्णन है, कपिल बता रहे हैं देवहूति माँ को कि कुछ जो जीव हैं जो पहले जीवन से कुछ स्पिरिचुअल लाइफ डेवलप किए हैं उनको उस समय पूरी तरह से स्मरण होता है अपने 100 जन्मों के कष्टों का कि मैंने क्या क्या कष्ट झेले हैं, और इतना कष्ट में होकर के वो भगवान से उस समय प्रार्थना करता है जीव कि भगवान ये जो मेरा जन्म होगा इस जन्म में मैं केवल आपकी भक्ति करूंगा और दोबारा से किसी और मां के गर्भ में नहीं जाऊंगा। ये प्रॉमिस करता है जीव मां के गर्भ में कि इस बार मैं जन्म लूंगा, और मैंने अभी तक बहुत भूले कि माफ करो सब आपको बाबा भुलाया है, पर ये जन्म लेते ही मैं केवल आपकी भक्ति करूंगा और आपके धाम वापस आऊंगा, दोबारा से नहीं लूंगा। लेकिन जन्म होते ही फिर दोबारा से माया के प्रभाव में सब भूल जाते हैं। ऐसे हमारी चक्र चल रहा है, चलते चलते अई ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ऐसे भ्रमण करते करते कोई भाग्यवान जीव है जिसे गुरु और कृष्ण की कृपा मिलती है और भक्ति लता का बीज उसके हृदय में स्फुट होता है। आप जा रहे हैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जा रही है, आप तो ऐसे ही जा रहे हैं, आपको कोई इंटेंशन नहीं है, जाके आपके जगन्नाथ जी के दर्शन हो गए और वहां किसी ने आपको प्रसाद दे दिया, आपकी कोई इच्छा नहीं थी प्रसाद लेने की, किसी ने दे दिया, आपने खा लिया, शुरुआत हो गई भक्ति की। आपके घर में कोई भक्त आ गए, संत आ गए, ओ जाने जाने में हरे कृष्णा आपके मुंह से निकल गया, आपको कोई जानते नहीं कृष्ण क्या है हरे क्या है, कुछ जानते नहीं, जाने जाने में हरे कृष्णा स्टार्ट हो गया आपकी लाइफ। इसे कहते हैं अज्ञात सुकृति, अज्ञात सुकृति, अनजाने में सुकृति। तो भगवान के जो भक्त हैं वो भ्रमण करते रहते हैं लोगों को ये अज्ञात सुकृति देने के लिए। कोई भगवान का महान भक्त है, स्टेशन पे जा रहा है, आपने बोला अरे स्वामी जी क्या चाहिए, पानी चाहिए, ये लो पानी ले लो, आपको कोई इंटेंशन नहीं है कि उससे मैं आध्यात्मिक लाभ लूं, कुछ नहीं पता, जस्ट फॉर्मेलिटी की तरह से आपने दे दिया। पर वो भगवान का महान भक्त होने की वजह से ये सुकृति, आध्यात्मिक सुकृति ऐड हो गई आपके अकाउंट में, स्पिरिचुअल अकाउंट में। ऐसी अज्ञात सुकृतियां मिलते मिलते कई जन्मों के बाद धीरे 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 ऐसी अज्ञात सुकृति की वजह से हमारी हम एक स्टेज पे पहुंचते हैं जिसे बोलते हैं श्रद्धा। आप देखें कुछ लोगों को श्रद्धा होती है शास्त्र में और कुछ लोगों को श्रद्धा बैठती नहीं है, कितना भी समझा लिया कुछ भी कर लीजिए उनकी श्रद्धा नहीं होती है। और कुछ लोगों को हाथ में लेते यहां भगवदगीता, ये बहुत अच्छा ज्ञान है समझना चाहिए, श्रद्धा है, और कुछ लोगों में श्रद्धा नहीं है। तो अज्ञात सुकृति की वजह से वो श्रद्धा बनती है, उस श्रद्धा की वजह से फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब श्रद्धा होती है तो आदमी खोजता रहता है, अरे उसे पता लगा न्यूज आ गई श्रीमद भागवत सप्ताह हो रहा है या कोई संत आए हुए हैं, तो श्रद्धा की वजह से क्या करता है वो जाता है उनको सुनने के लिए। जैसे आप श्रद्धा है तो इसलिए आप बुलाए हैं। तो श्रद्धा के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है साधु संघ, एसोसिएशन विद द डिवोटीज, साधु संघ। ये प्रोग्रेशन बता रहे हैं हम कैसे इस सभी इससे निकलने का प्रोसेस कैसे शुरू होता है, कहां चलता है, साधु संघ प्रारंभ होता है। और साधु संघ जब आते हैं तो साधु बताते हैं ज्ञान क्या है, कैसे हुआ, क्या हुआ, और फिर बताते हैं रास्ता क्या है निकलने का। तो वहां से नेक्स्ट स्टेज प्रारंभ होती है भजन क्रिया, आप खुद प्रोसेस अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ओके, श्रद्धा है, साधु संघ किया, उसे समझा, समय में आया, ओके यू स्टार्ट प्रोसेस नाउ भजन क्रिया। और फिर भजन क्रिया करने के बाद धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति, ये जो भौतिक इन्फेक्शन जो लग गया है धीरे धीरे वो छूटता है, और इसके आगे स्टेजेस हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे, कल और परसों कैसे कैसे हम आगे चलते हैं। तो ये इस तरीके से हम यहां फंसते हैं, कार्य करते हैं, और फिर यहां से हमारा बाहर निकलने का मार्ग ऐसे शुरू होता है। तो जब तक ये मार्ग पे हम, जब तक इस भौतिक जगत में रहेंगे तब तक ये सभी कष्ट हमको भुगतने ही पड़ेंगे, कोई भी योनि में हम रहें, कोई भी योनि में रहें। और जो तथाकथित हमें हैप्पीनेस मिलती है कोई भी योनि में किसी भी पोजीशन पे, वो इल्यूजरी है, ये हमको बिल्कुल स्पष्ट एहसास हो जाना चाहिए कि जो भी तथाकथित हैप्पीनेस सुख इस भौतिक जगत में है दैट इज सिंपली इल्यूजन, दैट कैनॉट मेक मी हैप्पी, दैट इज नॉट माई हैप्पीनेस। वो आत्मा का सुख नहीं है, वो केवल एक शरीर का है और मैं शरीर नहीं हूं इसलिए वो मेरा सुख नहीं है। तो हम थोड़ा उसको एनालाइज करेंगे कि भौतिक जगत का सुख कैसे इल्यूजरी है। हम बोल सकते हैं कि भगवान को किसने देखा, पर भौतिक जगत को तो आप देख रहे हैं, भौतिक जगत के सुख को तो आप अनुभूति कर रहे हैं, तो वो तो कम से कम आप स्वीकार कर सकते हैं। भौतिक जगत में मिलने वाला हर सुख टेम्परेरी होता है। इज देयर एनीबडी एनी आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, क्या ऐसा कोई भी आप बता सकते हैं भौतिक सुख जो परमानेंट हो? जब शरीर जो इस भौतिक सुख को लेने का माध्यम है जब वही टेम्परेरी है तो स्वाभाविक है कि कोई भी भौतिक सुख होगा वो टेम्परेरी होगा ही होगा। कुछ सुख एक सेकंड रहता है, कुछ एक घंटा रहता है, कुछ एक साल रहता है, जितना अधिक जो ग्रॉस लेवल पे सुख है वो उतना कम टाइम के रहता है, और जितना अधिक सूक्ष्म स्तर पर मन के और बुद्धि के स्तर वाले सुख हैं वो अधिक लंबे समय तक रहते हैं। आपने खाया भोजन ग्रॉस अपनी जीवा से, उसका सुख जब तक खाना खा रहे हैं 15-20 मिनट तब तक रहेगा बस, फिर खत्म। उसके बाद पेट में ज्यादा खा लिया तो परेशानी की वजह से वो सब आप रोएंगे क्या मैंने आज खा लिया, आगे से नहीं खाएंगे ये सब। वो कितने समय रहा? कुछ समय के लिए रहा। जो मानसिक स्तर के सुख हैं, आर्ट, म्यूजिक, ये सब मन के स्तर पे अनुभव करने वाले सुख हैं, आर्ट म्यूजिक, ये ज्यादा लंबे समय तक रहते हैं कंपैरेटिवली। फिर प्रेस्टीज, पोजीशन, हमारे समाज में बहुत अच्छी पोजीशन है, सब लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, ये भी एक इंद्रिय सुख है जो इंटेलिजेंस के लेवल पर अनुभव किया जाता है, या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सुख, मैनेजमेंट, दूसरों को कंट्रोल करने का सुख, ये सब बुद्धि के स्तर पे होते हैं। जैसे साइंटिस्ट, उनको खाना पसंद नहीं, खाना छोड़ देते हैं, सोना छोड़ देते हैं, बैठ के मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उनको उसमें आनंद आ रहा है, वो हैप्पीनेस है जो बुद्धि के लेवल पे अनुभव की जाती है, एक्सपीरियंस की जाती है। तो ये जो है, हो सकता है आपके पूरे जीवन तक रहे, आपकी जो पोजीशन का सुख है, यस आई एम ए सच ए बिग पर्सन, दैट हैप्पीनेस मे लास्ट मैक्सिमम जब तक आपका शरीर है, शरीर खत्म होने के बाद तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी हैप्पीनेस हो, किसी भी लेवल पे हो, ग्रॉस लेवल पे हो कि सूक्ष्म लेवल पर हो, उसका एक बिगिनिंग होता है, उसका एक एंड होता है। लेकिन हम आत्मा क्योंकि नित्य हैं, इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें कैसा सुख चाहिए, हमें कैसा आनंद चाहिए, नित्य सुख चाहिए, इजंट इट। अगर थोड़ा सा भी अवलोकन करें, हम नहीं चाहते हैं कोई भी हमारा सुख खत्म हो जाए, हम तो यही चाहते हैं कि जो भी सुख है वो हमेशा बना रहे, इजंट इट, यूनिवर्सली, यूनिवर्सली। क्यों? क्योंकि हम नित्य हैं, ये दिखाता है कि हम अलग हैं शरीर से, हम में से कोई मरना नहीं चाहता, कोई भी मरना नहीं चाहता, हालांकि हम जानते हैं कि हमको मरना पड़ेगा, सब मर रहे हैं, फिर भी कोई मरना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि आत्मा का यह स्वभाव है कि आत्मा कभी नहीं मरता, इसलिए वो इच्छा उसके अंदर है। युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न पूछा गया, आप जानते होंगे महाभारत में यक्ष जब पानी पीने गए तो यक्ष प्रश्न पूछे, तो उसमें एक प्रश्न था, इस भौतिक जगत में सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक चीज क्या है? युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया, सब लोग देख रहे हैं कि सब मर रहे हैं, उसके पड़ोसी मर रहे हैं, उसके घर वाले मर रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब जानते हैं, फिर भी हर व्यक्ति अपने बारे में यह सोच रहा है कि वो कभी नहीं मरेगा। यह सबसे बड़ा आश्चर्य है इस भौतिक जगत का। सेवन वंडर बोलते हैं, सेवन वंडर नहीं, दिस इज द हाइएस्ट वंडर, उसके सामने तो वंडर कुछ भी नहीं है, वंडर, दिस इज द हाइएस्ट वंडर, कि हर आदमी देख रहा है मर रहा है, जब शमशान में आते हैं वो बेचारा मर गया, उनको यह पता कि अगले अगले क्षण आप भी तो ऐसा हो सकते हैं, अपने बारे में नहीं सोचता हूं कि उसका भी हो सकता है, हो सकता है नहीं, उसके बारे में मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, अंदर से उसको यह विश्वास है कि उसके साथ ऐसा नहीं होगा। तो ये जो अनित्यता है, ये जीव को कभी संतुष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि हम नित्य हैं, इसलिए हमें नित्य आनंद चाहिए, हमें नित्य जीवन चाहिए, हमें नित्य संबंध चाहिए। हम चाहते हैं कोई हमारा फ्रेंड हो, हमेशा से हमारा फ्रेंड बना रहे, जब भी संबंध टूटते हैं तो बहुत कष्ट होता है हमें, क्योंकि हम चाहते हैं नित्य संबंध, क्योंकि वो आत्मा का गुण है, नित्य नित्य संबंध उसका भगवान के साथ है, वही उसको टेव है, वही उसकी आदत है, वही उसके स्वभाव है। लेकिन भौतिक जगत में जितने भी संबंध हमको मिलते हैं, जितने भी संबंधी होते हैं, वो एक ना एक दिन तो सब संबंध टूट जाते हैं, और टूटने की वजह से बहुत अधिक कष्ट देते हैं। कोई प्रेमी प्रेम करते हैं और फिर डाइवोर्स हो जाता है या झगड़ा आता है तो कितना कष्ट होता है, कई बार सुसाइड कर लेते हैं इस वजह से, है ना, कष्ट मिलता है। तो ये लक्षण है इस भौतिक जगत का, हर चीज टेम्परेरी है, हर भौतिक सुख टेम्परेरी है, इसलिए वो कभी भी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता। ये सिद्धांत जो है, ये बहुत गहराई से हमको हृदय में आत्मसात करना चाहिए कि जो भौतिक सुख है वो कभी भी, हरे कृष्ण, वो हमें कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकता। फिर दूसरा सेकंड गुण क्या है भौतिक? अच्छा, आप जा रहे हैं, हरे कृष्ण। दूसरा, भौतिक सुख के बाद भौतिक दुख आएगा ही आएगा। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है इस संसार में जो केवल भौतिक सुख में हो, और कोई व्यक्ति ऐसा भी नहीं है जो केवल भौतिक दुख में हो। ये जगत का नियम है, देयर विल बी सम हैप्पीनेस, देयर विल बी सम डिस्ट्रेस। हालांकि हम कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई भी डिस्ट्रेस आए, पर वो आएगी ही आएगी। अगर आप भौतिक जीवन में हैं, भौतिक शरीर धारण किए हुए हैं, तो आपका जो सुख है उसके बाद दुख का समय आएगा ही आएगा, जिसकी वजह से दोबारा हमको कष्ट होगा, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है नित्य सुख। थर्ड, भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए हमें अत्यंत कष्ट लेना पड़ता है स्टार्टिंग में ही। एक बड़ी पोजिशन पहुंचने के लिए कितना पढ़ाई, कितने टेंशन, कितने मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के वो सुख मिलता है, और जो अनित्य होता है, जो कि हम नहीं चाहते हैं। हम तो नहीं, हम ऐसा सुख चाहते हैं जिसमें कि कोई मेहनत ना करनी पड़े, जिसमें कोई ट्रबल ना लेनी पड़े, ओनली हैप्पीनेस, प्योर हैप्पीनेस चाहते हैं। पर भौतिक जगत की हर हैप्पीनेस के लिए हमको पहले कष्ट झेलना पड़ता है, तब जाकर के वो हैप्पीनेस मिलती है। दिस अनदर क्वालिटी ऑफ मेटल हैप्पीनेस. और मेटल हैप्पीनेस स्टार्टिंग में हैप्पीनेस लगती है, पर जैसे समय बीतता है वही चीज टेस्टलेस हो जाती है. स्टार्टिंग में वो बहुत आनंद प्रदान करती है, पर वही चीज रहती भी है तो भी उसका जो स्वाद जो आता था उससे वो खत्म हो जाता है. जैसे गन्ना शिरडी, अगर हम गन्ने को नीचे से खाएंगे जड़ से तो पहले मीठा लगेगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे फीका लगने लगेगा. उसी प्रकार से भौतिक सुख, हर एक चीज स्टार्टिंग में अच्छी लगेगी, धीरे धीरे वो चीज बेकार लगने लगेगी. जब पहले दिन हमको प्रमोशन मिलता है तो अलग ही आनंद होता है, उसके एक साल बाद वैसा आनंद नहीं मिलता है जो उस दिन मिला था. या कोई जॉब मिलता है, हालांकि हम उसी पोजिशन पे हैं अभी भी, पर अभी वो आनंद नहीं है. ये अलग नेक्स्ट क्वालिटी है कि उसका जो सुख है वो अपने आप रिड्यूस होता रहता है. विवाह के समय में सबको बैंड बाजा बजता है, सब बहुत खुशी होते हैं, पर वो पहले दिन ही बस बैंड बाजा बजता है, फिर दोबारा जीवन में कभी ऐसा सुख का ऐसा सुख का दिन दोबारा कभी नहीं आता जीवन में कि हमको उतना उतना सुख दोबारा मिले कि हम दोबारा घोड़े पे बैठे है ना. तो वो लक्षण है कि भौतिक जगत में कोई भी सुख है वो अपने आप रिड्यूस होता है, अपने आप उसका आनंद जो है उससे मिलने वाला वो खत्म होता है. और सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है भौतिक सुख का, वो हमें इस भौतिक जगत से बांधता है. हमको बार बार इसी भौतिक जगत में जन्म लेने के लिए फोर्स करता है. तो इस प्रकार से भौतिक सुख हमारे लिए हथकड़ी है. जैसे एक मछली के लिए दाना डाला जाता है, मछुआरा पकड़ने के लिए मछली को दाना डालता है, तो मछली सोचती है वाह आज तो बहुत बढ़िया है, भागती है उसकी तरफ. पर वास्तव में वो दाना उसके लिए क्या है, उसके मृत्यु है. वो जाल है उसके लिए, उसको पकड़ने के लिए है. वो ऐसे हिरण को कैसे पकड़ा जाता है, शिकारी बांसुरी बजाता है तो अपने सुनने वह मधुर संगीत में आकर सब हिरण जो है इकट्ठे आते हैं सामने, और फिर आराम से शिकारी उनको पकड़ लेता है. तो इस भौतिक जगत में जो इंद्रिय सुख है वो माया की हथकड़ी है हमें इस भौतिक जगत में बांधे रखने के लिए. हमने बोला माया एक प्रिजन हाउस की तरह से है, प्रिजन में सलाखें होती हैं, हथकड़ियां होती हैं, पर माया की हथकड़ियां लोहे की नहीं बनी है. माया की हथकड़ियां बनी है ये इंद्रिय भोग की लालसा की. माया हमको लुभाती रहती है, माया शक्ति कम ये देखो अगर आपको ये प्राप्त कर लोगे तो आपको बहुत सुख मिल जाएगा, ट्राई फॉर इट, गेट इट, गेट मर्सिडीज, गेट दिस पोजिशन, गेट दिस, देन यू विल बी हैप्पी. ये माया का काम है हमको अंदर से ये इंस्पिरेशन देना. सी हिम, ही इज सो नाइस, ही इज सो हैप्पी, व्हाई डोंट यू बिकम लाइक हिम, व्हाई डोंट यू अचीव दिस, व्हाई डोंट यू अचीव दिस, ऐसे हमको प्रलोभन देती है, प्रलोभन हमको पकड़ती है. और जब तक हम इन भौतिक सुखों के पीछे भागते रहते हैं, जब तक हमारे अंदर एक भी ऐसी इच्छा रहती है कि इस भौतिक जगत में हम सुखी हो सकते हैं, जब तक ऐसी 1% भी इच्छा हमारे अंदर रह जाती है, तब तक हमें दोबारा से इसी भौतिक जगत में आना पड़ेगा ही पड़ेगा. तो यह हथकड़ी है हमारे लिए भौतिक सुख, ये प्रलोभन है माया का जो हमको बांधे रखती है इस भौतिक जगत से. तो इसलिए जब तक हमारे अंदर 1% भी होप है आई कैन बी हैप्पी इन दिस मेटीरियल वर्ल्ड, वी विल हैव टू बी इन दिस मेटीरियल वर्ल्ड एंड सफर बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज परपेचुअली. जैसे एक छोटी सी कहानी है, एक आदमी जो है वो जंगल में गिर गया, बहुत गहरा जंगल है, सब जंगली जानवर है, चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवार है जंगल की, बाहर नहीं निकल सकता, कोई ऊपर से टपक गया. अंदर जाता है तो देखता है सब जंगली जानवर बहुत भूखे हैं और सब उसके पीछे दौड़ पड़े. तो आप सोचिए क्या स्थिति उसकी होगी, वो लतर पतर भाग रहा है, बहुत डर गया है, हांस चढ़ रही है, पसीने निकल रहे हैं, अकेला है और सब जंगली जानवर पीछे हैं, भाग रहा है पूरी तरह बहुत गहरा जंगल है, दिख नहीं रहा है कुछ, अंधेरे में कहाँ है क्या है, और भागते 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 एक गड्ढे में गिर जाता है, गहरे गड्ढे में. और गहरे गड्ढे में जब गिर रहा है तो ऐसे हाथ पैर फैलाता है तो उसका हाथ जो है एक पेड़ की टहनी पे अटक जाता है, जो दीवार थी उसकी गहरी गड्ढे की, उसकी दीवार पे एक पेड़ था और उसकी एक टहनी पे उसका हाथ पड़ जाता है, तो पकड़ लेता है उसको और पकड़ करके झूल लगता है. फिर देखता है कि नीचे एक मगरमच्छ है, तलहटी में गड्ढे के नीचे एक मगरमच्छ है, ऐसे मुंह खोले, उसने देखा कि आदमी टपक रहा है, तैयार है उसे निकलने के लिए, इंतजार कर रहा है उसकी, और ऊपर सब जंगली जानवर जो है वो सब हाँ उनको खाना नहीं मिला, वो सब इकट्ठे हो गए वहां, कहां गया ऊपर कब आएगा, तैयार है उसे खाने के लिए. इस बीच में जब वो लटक जब वो उस पेड़ से टकराया तो वहां एक मधुमक्खी का छत्ता था, तो उसका हाथ जो है वो मधुमक्खी के छत्ते पे लगा, तो सब मधुमक्खियां जो है वो निकल करके परेशान होकर के गुस्से में आकर के उसे काट रही हैं। अभी एक हाथ से उसने पकड़ा है और सब मधुमक्खियां काट रही हैं चारों तरफ, हाथ छोड़ेगा तो नीचे जाएगा, तो कुछ नहीं कर सकता है, सब मधुमक्खी काट रही है, इतना सब कष्ट है, ऊपर जंगली जानवर है, नीचे मगरमच्छ है, और उस पेड़ पे दो चूहे हैं, एक सफेद रंग का और एक काले रंग का, जो जिस टहनी पे वो लटका है उस टहनी को काट रहे हैं। तो धीरे धीरे वो टहनी नीचे गिर रही है, तोड़ रही है। जब सफेद चूहा थक जाता है तो काला आता है, और जब काला थक जाता है तो सफेद आता है, लगे हुए। अब ऐसी विषम स्थिति में इतनी सब तरफ से कठिनाइयां हैं, पर उसमें वो जो छत्ता टूटा तो उस छत्ते में से टूट करके शहद की एक बूंद उसकी जीभ पे आके गिरती है, और उसे इतना आनंद आता है उस एक बूंद में, और वो इंतजार करने लगता है कि अगली बूंद कब गिरेगी, और उस अगली इंतजार में वो सब अपना दुख भूल जाता है। ऐसी हमारी स्थिति है, जो मगरमच्छ है वो मृत्यु है, जो सबका इंतजार कर रही है, जो ये मधुमक्खियां हैं वो सब ये त्राप त्रय हैं, कष्ट हैं, तीन प्रकार का जो हमेशा हम काट रहे हैं, हर क्षण हर दिन नई नई प्रॉब्लम, हर हर दिन चिंताएं, ये काट रहे हैं। और ये जो चूहे हैं सफेद और काले, ये दिन और रात की तरह से हैं, जो हर दिन हमारी आयु कम करके हमें मृत्यु की तरफ धकेल रहे हैं। इन सब कष्टों के बीच में वो जो इंद्रिय सुख हम ले रहे हैं वो एक बूंद शहद है, थोड़ा सा इंद्रिय सुख, चप्पल, पूरा दिन मेहनत करके थोड़ा सा एक सुख बस, और हमें आशा है, आज अभी बर्थडे गया बहुत मजा आया, अभी अभी अगली आशा, अभी क्या त्यौहार कौन सा आने वाला है, अरे हाँ वो आने वाला है, मजा आएगा, आशा, फ्यूचर की आशा। हाँ, हम हमेशा प्लानिंग करते रहते हैं अभी अगला क्षण कब आएगा जब हमें आनंद मिलेगा, उस आशा पे हम टिके हैं, उस आशा की वजह से ये सब जो पूरा हर दिन के दुख हैं ये सब इन सबको जैसे भूल जाते हैं और सोचते हैं आई एम हैप्पी। दिस इज कॉल्ड इल्यूजन, ये है माया का प्रभाव। तो हमको ये स्पष्ट समझना है यदि हम इस भौतिक जगत से निकलना चाहते हैं कि जो भी हम तथाकथित सुख अनुभव कर रहे हैं वो केवल इल्यूजन है, इट्स इल्यूजन। हमारी स्थिति से मछली की तरह से है, हम बाहर हैं, माया के प्रभाव से हम समझ नहीं रहे हैं, जैसे एनेस्थीसिया दे दिया जाता है तो ऑपरेशन करते हैं पर फिर भी अनुभव नहीं होता है कष्ट का, ऐसे माया एनेस्थीसिया दिए हुए है, हमको लग रहा है कि हम आनंद में हैं पर वास्तव में हमारी स्थिति बहुत कष्टप्रद है। जब तक हमको ये रियलाइजेशन नहीं होगा, जब तक हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे कि हम कष्ट में हैं और इस भौतिक जगत में हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते, चाहे ब्रह्मा बन जाए तो भी, आदमी छोड़िए, अमेरिका जाना छोड़िए, हाई पोजीशन छोड़िए, कुछ भी छोड़िए, आप ब्रह्मा बन जाए तो भी आप सुखी नहीं हो सकते, जब तक ये कन्विक्शन हमको नहीं होगा तब तक इसी भौतिक जगत में रहना पड़ेगा। इसलिए ये हमें समझना है शास्त्रों से सबसे पहले तो कि हमारी कितनी खतरनाक स्थितियों में पड़ गए हैं, इट इज नॉट अवर नेचुरल पोजिशन, ये हमारी वास्तविक स्थिति में नहीं है, ये हम बहुत विषम स्थिति में गिर गए हैं और उस इससे निकल करके वापस जाने की हमें इच्छा होनी चाहिए। यहां से शुरुआत होती है भगवत धाम जाने के रास्ते की। जब तक किसी व्यक्ति में ये सुदृढ़ इच्छा नहीं हो गई है कि भौतिक जगत से निकलना है तब तक वो एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ा सकता। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया कैसे हम जीव यहाँ भौतिक जगत में आए हैं और कैसे शरीर बदल रहे हैं, क्या नियम है उसके, और कैसे हर योनि में कष्टों को झेल रहे हैं क्योंकि हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं है। इसके विपरीत हमारी स्वाभाविक स्थिति आध्यात्मिक जगत में, उसका वर्णन हम पढ़े, सच्चिदानंद, नित्य आनंद है, वहाँ जो हमें चाहिए वहाँ है, पर भूल करके उसको यहाँ पर फंसे हुए हैं, इसलिए अभी वहाँ से वापस अपने घर जाना है, ये आध्यात्मिक जीवन है। हरे कृष्ण। अनेक कोई प्रश्न है इस विषय में?
स्वामी, ये आपने बोला कि स्मशान वैराग्य, तो अगर स्मशान वैराग्य नहीं होता समाज में लोगों के मन में, तो क्या जीवन फिर सत्य होता है? कोई दुखद घटना बन गई तो फिर वही कह रहे हैं लोगों के साथ, मतलब मरते रहेंगे लाइफ देर।
हाँ जी, मतलब हमेशा से दुखी रहता तो ऐसा कह रहे हैं ना,
स्मशान वैराग्य नहीं होता तो
शमशान वैराग्य की
दुखी रहता
कोई कोई चीज में। हाँ, तो इसलिए माया के प्रभाव की वजह से दुख भुला दिया जाता है हमको, क्योंकि माया का काम क्या है, जीव की इच्छाओं को पूर्ति करने की फैसिलिटी देना। तो प्रिजन में डंडे तो पड़ेंगे ही, कष्ट तो होगा ही, पर माया भगवान की एजेंसी है इसलिए वो कार्य कर रही है कि जीव को इसी भौतिक जगत में रहने की जब तक इच्छा है तब तक उसे कैसे ना कैसे इच्छा भोगने दो। तो यदि हमको ये दुख सब याद रहेंगे तो हम जो हमारी इच्छा है हमको पूरा नहीं कर पाएंगे, उनको इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान माया के द्वारा वो कष्टों को थोड़े समय बाद भुला देते हैं।
तो ये भगवान का ही प्रोविजन है सर?
यस, हाँ, भगवान का प्रोविजन है माया का, क्योंकि हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। भगवान जबरदस्ती किसी को नहीं लाना चाहते, भगवान पूरा मौका देते हैं, यू ट्राई फुल्ली, मेरे से दूर जाकर के आपको जितना प्रयास करना है सुखी रहने कर लो, सब फैसिलिटी भगवान प्रोवाइड करते हैं। हर योनि प्रोवाइड करते हैं हमको, जो योनि चाहिए, ब्रह्मा की योनि चाहिए, चीटी की योनि चाहिए, जैसा सुख चाहिए सब प्रोवाइड करते हैं, पूरी फुल फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम अनुभव कर लें खुद, भगवान की शरण के अलावा और कुछ संतुष्ट नहीं कर सकता। इसलिए भगवान सब अरेंजमेंट कर रहे हैं माया के द्वारा, यू ट्राई योर सेल्फ। भगवान भगवद्गीता बोलने के बाद भी अर्जुन को बोले यथेच्छसि तथा करु, अब जो आपकी इच्छा है वो करो। भगवान कभी हमारी इंडिपेंडेंस के ऊपर अतिक्रमण नहीं करते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता भगवान ने हमको दी है, हम भगवान के अंश, इसलिए हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, क्योंकि हमारा भगवान के साथ संबंध प्रेम का है और प्रेम जबरदस्ती नहीं होता है। प्रेम जबरदस्ती नहीं होता है कि आपको प्रेम करना ही पड़ेगा, नहीं, प्रेम स्वतंत्रता के ऊपर आधारित है। इसलिए भगवान हमको स्वतंत्रता का हमारा अतिक्रमण नहीं करते हैं, ही अलाउ अस टू यूज दैट इंडिपेंडेंस। जब अपनी इच्छा से हम आते हैं भगवान के पास, भगवान यस नाउ आई वॉन्ट टू कम टू यू, रियली नाउ यू कम, इस तरह से होता है। और कोई प्रश्न?
लास्ट सेशन यू आर टेलिंग आत्मा इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ओके, वन बॉडी टू
अनदर बॉडी,
ओके, दैट इज नॉट गोइंग टू बी स्टेइंग वन पर्टिकुलर प्लेस,
यस,
करेक्ट, राइट। व्हेन ए पर्सन डाइज नेचुरली देन वी डोंट नो द वेयर द आत्मा हैज गॉट फ्रॉम दिस प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज देयर, ओके, राइट। व्हेन ए पर्सन ट्राइंग टू किल अनदर पर्सन, the person who is going to die, the atma where it is there, it is knowing that this person is going to kill me, why atma will not going to defense, why atma is not having any defense in this means, it cannot able to protect it, atma is when natural death, it is moving from one place to another place, that is okay, but when a person is trying to kill another person, right? Because we have discussed last time that the body has not suitable for that atma, so it has left that body and has gone from this place to another place, but when a person is trying to kill another person, it doesn't mean that that body is not suitable, you are forcing the atma to go away from that particular place,
yes,
why atma cannot able to defend that one?
Because atma ki shakti nahi hai, atma bahut choti hai, hum defend karne ka prayas to karte hain, koi marne ke liye aata hai to bachne ka prayas to karte hain, prayas to karte hain hum, par हम पूर्ण स्वतंत्र नहीं हैं अपने को बचाने में। नियमों के अनुसार, प्रकृति के नियमों के अनुसार, जो मारने वाला है उसका भी अरेंजमेंट है कर्म के अनुसार, उसके मारने की इच्छा कितनी प्रबल है, और आपके कर्मों के अनुसार आपका उस प्रकार से उस सिचुएशन में फंसना, ये सब हायर अथॉरिटीज के द्वारा असेंबल्ड होता है। तो आत्मा पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है, इसलिए आत्मा अपना डिफेंस नहीं कर सकती है। अगर कोई ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति है शरीर के सभी देखें, सो ही कैन किल जो कमजोर है। आत्मा, आत्मा इंडिपेंडेंट नहीं है, आत्मा मतलब पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है, आत्मा सर्वशक्तिशाली नहीं है, वो पूरी तरह से गुणों के द्वारा फंसी हुई है, प्रकृति के नियमों के द्वारा, इसलिए वो ऐसे स्वतंत्रता से अपना बचाव नहीं कर सकती है। यदि कर्म के अनुसार, यस, यदि कर्म के अनुसार उसको उस समय उस प्रकार से भुगतना है, सो ही कैन नॉट डिफेंड, उसको करना है, वो जाना ही पड़ेगा। अभी ये जो जैसे पाप कर्म जो करते हैं, तो ये भी भगवान सैंक्शन करते हैं, बिना भगवान की सैंक्शन के तो एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। आप देखिए कोई आदमी मारने जा रहा है तो ये हाथ चला कौन रहा है, पैरालिसिस हो गया तो अल्टीमेटली बॉडी चल रही है, हमको तो पता भी लगता है कैसे हमारा, हमको पता है किसी के हार्ट हमारा कैसे चल रहा है, हम इसको इंटेंशनली चला रहे हैं हार्ट को, नहीं, परमात्मा ऑटोमेटिकली चला रहे हैं उसको, हमारा कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। हम हाथ में चला रहे हैं, अभी अचानक पैरालिसिस हो जाए, यू कांट मूव। तो हम इस प्रकार से भगवान सैंक्शन करते हैं इच्छा को देख करके, इसकी इच्छा है ये प्रकार का क्राइम करने की, और उस प्रकार का आदमी को ले आते हैं जिसको ऐसा भुगतना है। कंबाइंड एक ट्रेन है, सबके अलग अलग कर्मों के रिएक्शंस को देख करके एक ही ट्रेन में, एक ही डब्बे में सब इकट्ठा हो जाते हैं। हायर अथॉरिटीज दे आर सीइंग दिस, दिस इज मैनेजमेंट, कैसे कैसे क्या हो रहा
है ये तो पहले बिलीव करना पड़ेगा समथिंग इज मतलब कोई शक्ति है जो कि सबको कंट्रोल कर रहा है. अब जितने भी एक्शंस हैं जैसे बॉडी भी किसने किया सो दे आर मतलब वो फिजिकली वो कंट्रोल करके उसके माध्यम से उसको करा रहे हैं. सो दैट नाम तो उसका होता है जो कि फिजिकली दिखाई देता है कि सपोज बट बिकॉज ऑफ जो डिफरेंट जो भी चाहे आप कर्म कह लीजिए या जो उसकी सोच कह लीजिए उसका विजडम कह लीजिए उसके हिसाब से जो है मतलब जो कंबाइंड कंट्रोल इफेक्ट जो है उसकी वजह से ये एक्शन एंड रिएक्शन होते रहते
हैं. मतलब कर्ता तीन होते हैं. एक ये प्रश्न है अगर आदमी जो मार रहा है वो उसके कर्म की वजह से हो रहा है वो भी खुद नहीं वो भी हायर अथॉरिटीज करवा रही हैं तो सजा उसको क्यों होती है फिर. तो ये प्रश्न है कि कर्ता कौन है. हु इज द एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शन. कोई भी एक्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है. तो तीन कर्ता है तीन कर्ता थ्री डूअर्स हैं. एक है जीव जो इच्छा करता है. एक है भगवान परमात्मा जो सैंक्शन करते हैं और एक है प्रकृति जो भगवान की सैंक्शन के अनुसार फैसिलिटी प्रोवाइड करती है उस एक्शन इस डिजायर को पूरा करने के लिए. तो तीनों मिलकर एक काम कर रहे हैं पर रेस्पॉन्सिबल कौन माना जाएगा. जो इच्छा कर रहा है वो भगवान रेस्पॉन्सिबल नहीं माने जाएंगे. भगवान न्यूट्रल है. आपने इच्छा किया भगवान ने सैंक्शन किया प्रकृति ने आपको फैसिलिटी दिया बुद्धि दिया उसको मारने का. ये प्रकृति ने बुद्धि दिया हाँ परमात्मा ने दिया पर आपने इच्छा किया इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है. वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्ट्स क्योंकि हम इच्छा हम करते हैं पर इच्छा की पूर्ति करने के लिए भगवान सैंक्शन करते हैं और प्रकृति हमको उस प्रकार का अरेंजमेंट करके देती है. क्योंकि भगवान जो है मैंने आपको बताया जो जीव की स्वतंत्र इच्छा शक्ति है उसको दबाते नहीं है. भगवान एडवाइस हमेशा कर रहे हैं परमात्मा के रूप में. कॉन्शियंस दिस इज रॉन्ग डोंट डू इट ही एडवाइजेस अस पर सुनना ना सुनना एडवाइस वो हमारे हाथ में है. भगवान हमको फोर्स नहीं करते हैं कि जबरदस्ती नहीं करो. ही अलाउज अस क्योंकि अंत में आत्मा मरने वाला तो है नहीं. वो अपने इस गलत कर्म से सीखेगा कि ये मैंने गलती किया. सो ही विल गेट रिफॉर्म्ड. ये भगवान का रिफॉर्मेशन का तरीका है नॉट बाई फोर्स बट बाई लेटिंग देम एक्सपीरियंस देमसेल्फ क्योंकि संबंध प्रेम का है जबरदस्ती का संबंध नहीं है. इसलिए जब तक जीव अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करके जब तक उसे लगेगा मेरी इच्छा पूरी नहीं करने दी भगवान ने सो दैट डिजायर विल रिमेन. सो ही डजंट वॉन्ट टू फोर्स बट ही गिव्स एडवाइस. परमात्मा के रूप में अंदर से बोलते रहते हैं ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है. हमेशा से एडवाइस कर रहे हैं मेरे पास आ जाओ ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है लेकिन हम सुन नहीं रहे. भगवान परमात्मा के रूप में एडवाइस दे रहे हैं बल्कि हर जीवन में हमारे साथ साथ आ रहे हैं. भगवद गीता के रूप में हमको एडवाइस दे रहे हैं. साधुओं के रूप में एडवाइस दे रहे हैं. खुद आते हैं अवतरित होते हैं एडवाइस देने के लिए. भगवान तो सब चाह रहे हैं isn't it. नहीं तो भगवान छोड़ सकते थे ना. ठीक है जाओ मर जाओ जो करना है करो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं. पर भगवान को गाइड करने के लिए आत्मा परमात्मा के रूप में आ रहे हैं शास्त्र के रूप में आ रहे हैं. बिकॉज ही इज मर्सीफुल. वो चाहते हैं कि हम वापिस आए पर जबरदस्ती नहीं करते हैं. ऐसा है
उन्होंने कई बार सबको समझाया था अलग अलग और दैट जो उन्होंने एक जो मेन जो चीज है जब वो खुद दूध के रूप में जनरली जैसे दूध भेजते थे पहले अलग तो वो अपना एक मैसेज देता था कि पीस का संदेश. तो महाभारत में श्री कृष्ण खुद जो है पीस का संदेश लेके गए थे दुर्योधन के पास धृतराष्ट्र के पास या विष्णु पितामह जिनको भी आप कह लें उनके पास गए थे. मतलब दैट ट्राइड और ही मतलब दैट इलस्ट्रेटेड that he has made every effort to tell them कि ये जो आगे होने वाला है वो सही नहीं है. मतलब सबके लिए नुकसान है दोनों के लिए लेकिन उनका कोई भी बात जो है किसी ने भी नहीं मानी. Because that जैसा कि उन्होंने बताया कि that every individual was thinking कि नहीं मैं पावरफुल चाहे वो आप दुर्योधन ले लें चाहे उसके साथ कर्ण ले लें या जो उनके सपोर्टर्स थे भीष्म ले लें. भीष्म ससंकेत जरूर थे कि ये ठीक नहीं होगा और अर्जुन क्योंकि उनका अर्जुन से अफेक्शन था लेकिन 100% वो भी श्योर नहीं थे यदि लॉर्ड कृष्णा के हिसाब से. मतलब वो लेकिन उनको 99% क्योंकि उनका अटैचमेंट अर्जुन के साथ था इसलिए एवरी टाइम तक उनको यही लगा रहता था कि अर्जुन की तरफ से जो पार्टी है वो जीतेंगे क्योंकि वो अफेक्शन था. जैसे अपने को क्या है टू पावर्स, जैसे अभी मैच होगा इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट जो टीम स्ट्रांग है कोई जाने नहीं जाने, बट नोबडी विल बिलीव इट अनलेस दैट फैसला नहीं होगा। तो अटैचमेंट जिसका जिसके साथ ज्यादा रहेगा वो उसी को ही फेवर करेगा चाहे वो कितने भी। तो ये सेम थिंग दैट ही डिपिक्टेड जो ये पूछ रहे थे कि वो हम क्यों नहीं रोकते रोकने से, ये महाभारत में तो उन्होंने खुद बताया। मतलब जैसे अभी तो इन्होंने कहा कि दैट एवरी इंडिविजुअल को हो सकता है किसी कारण से वो रोकते हो वी आर नॉट रिलाइजिंग, लेकिन बाकी जनता के लिए महाभारत में दैट ही डिपिक्टेड कि दैट ही हिमसेल्फ हैज गॉन देयर। और जब वो समझा रहे थे पीसफुल बता रहे थे तो देन उन्होंने काफी मतलब उनको भला बुरा कहा, उनकी कोई बात नहीं। सेम थिंग यदि आप कहें साहब के शब्दों में, पहले तो मैं नहीं रियलाइज करता था बट नाउ दैट आई रियलाइज कि यदि लॉर्ड कृष्ण ही कोई सुप्रीम मानते हैं तो रामायण में मतलब हनुमान जी को भेजा था क्योंकि साक्षात शंकर जी के रूप में और वो उनको दूध के रूप में भेजा था और दैट उनके माध्यम से श्री राम ने, क्योंकि वो तो खुद नहीं जा सकते थे तो उनके माध्यम से रावण को पूरी चीज बताने की कोशिश की गई थी। तो एक्सेप्ट रावण और जो उनका इंद्रजीत या जो और उनको छोड़ के बाकी इवन मंदोदर या जितने भी और सलाहकार थे वो सब जानते थे कि ये कुछ गलत होने वाला है, लेकिन उसके बाद माना नहीं, वो लोग माने नहीं, तो माने नहीं तो फिर दिस हैज टू बी उसका मतलब नतीजा होगा।
इसलिए भगवान फोर्स नहीं करते, एडवाइस देते हैं। तो अभी हम कल और परसों अपने जो कंक्लूडिंग सेशन रहेगा इसमें प्रोसेस के ऊपर अभी जाएंगे, व्हाट इज द प्रोसेस नाउ हैविंग अंडरस्टूड कि हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या है, हम कौन हैं, कैसे आए हैं, क्या संकट में हैं, क्यों हमें जाना चाहिए, ये सब समझने के बाद नेक्स्ट टू क्लासेस वी विल डिवोट कि अभी रास्ता क्या है वापस जाने का। यस देखिए अभी तो संसार में ही है, तो अगर प्रोसेस कोई भी हम बात करेंगे तो वो ऐसा ही प्रोसेस होना चाहिए कि जो आज की स्थिति से शुरू हो सके। अगर वो ऊपर की स्थिति शुरू हो जाए तो वो तो फिर हम अप्लाई नहीं कर सकते अपने ऊपर।
जो क्वेश्चन मतलब किया था, हाँ जी, जो भी मतलब ने आंसर हो रहा था या जो आपने शुरू में कहा था कि जैसे बॉडी नाउ दैट जन्म तो आदमी ने ले लिया है,
हाँ जी,
और दैट इज बेस्ड ऑन जो भी आप पुराना सोच रहे थे या पुराना कर्म थे आपके और उसके आधार पर नाउ दैट यू आर गोइंग टू फेस ऑल दीज डिफिकल्टीज जो भी भौतिक जगत में होना है ना, इसी को रहते हुए जब तक कि आप दूसरे और किसी योनि में नहीं चले जाते हैं उसको हाउ यू कैन इंप्रूव अपन, मतलब कैसे कर सकते हैं उसको, हाउ यू कैन मतलब दैट सेफ गार्ड, सपोज पहले से डिटरमाइन हो गया कि ये चीज होना है, इज देयर एनी स्कोप कि मतलब उसको आदमी और इंप्रूव कर सकता है।
यस, उसे कहते हैं ज्ञान, नॉलेज। जैसे हमने बताया है कि ये जो जैसे गुण है तो एक पर्टिकुलर प्रकार जैसा आपको शरीर मिल गया वैसे गुण आपके ऊपर हावी हो गए, पर ज्ञान जो रियल नॉलेज का प्रोसेस है, ज्ञान मतलब कोई सा भी ज्ञान नहीं, भगवान बताते हैं कि ज्ञान के अंग क्या क्या है, रियल नॉलेज क्या है, उससे आप ये तीनों प्रकृति गुणों से निकल सकते हैं बाहर, आप कर्म के सिद्धांत से बाहर निकल सकते हैं, कर्म बंधन से बाहर निकल सकते हैं, वही ये ज्ञान जो अभी ये जो ज्ञान चल रहा है इस समय, दिस इज द नॉलेज हाउ टू ब्रेक फ्री ऑफ दिस बॉन्ड्स। प्रकृति के प्रभाव से ऐसा होना चाहिए, पर नाउ द प्रोसेस इज कि ज्ञान के द्वारा आप कैसे अपने को इस कर्म बंधन से बाहर निकाल सकते हैं, तो उसके अंतर्गत गलत आदतों से निकल सकते हैं, और भगवान की पूर्ण शरणागति में आने पर तो कंप्लीटली फ्री, फिर तो भगवान के हाथ में डायरेक्ट कंट्रोल चला आता है। किसी की आयु लिखी है कि उसको यहां मरना है, पर भगवान तो सबसे ऊपर है, ही कैन एक्सटेंड। तो एक शुद्ध भक्त के लिए तो देर इज नो मोर डेस्टिनी और एनीथिंग, ही इज कंप्लीटली डायरेक्टली इन द कंट्रोल ऑफ सुप्रीम गॉड हिमसेल्फ, फिर भगवान की इच्छा से होता है उसका जो भी होना होता है, क्योंकि वो पूरी शरणागत है, वो भगवान की सेवा में लगा है, अभी भगवान डायरेक्ट चार्ज ले लेते हैं। बाकी लोगों के लिए प्रकृति के नियम चलता है, जैसे अकबर ने एक बार प्रश्न पूछा कि ये भगवान क्या पक्षपात करते हैं अपने भक्तों के साथ, ऐसा करते हैं भगवान ऐसे स्पेशल, तो उन्होंने बोला नहीं पक्षपात नहीं करते हैं, नेचुरल है ये। तो बोले मैं बताऊंगा आपका समय आने पर, बीरबल ने, तो एक बार नौका यात्रा चल रही थी, कंपटीशन नौका यात्रा का, तो राजा भी नौका पे थे, तो बीरबल ने क्या किया उनके एक बच्चे को उठा करके सब पानी में डाल दिया, तो नौका वो चल रहा है तो राजा ने अरेंज किया था कि बहुत सारे तैराक बचाने के लिए हो कोई डूबने लगे तो, पर राजा ने किसी दूसरे को नहीं बुलाया कि बचाओ, खुद डाई लगाया। तो लाइक दैट एक भक्त जो भगवान के शरणागत आता है, जैसे एक बच्चा अपने माता पिता की गोद में रहता है या उनके संरक्षण में रहता है, तो माता पिता अपने ऊपर उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, तो ऐसे ही भक्त की जिम्मेदारी पूरी भगवान के ऊपर आती है। इसलिए हम जो प्रोसेस पढ़ेंगे कि जो बेस्ट प्रोसेस है इन सभी अपने अनर्थों से, सभी गंदगी से निकलने का, इस बाउंडेशन से निकलने का, वो है भगवान श्री कृष्ण की शरणागति। विद दैट इट इज पॉसिबल।